नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार। मैं हूं सचिन गौड़। 20 सितंबर 2019 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, दुनिया की नजरें लगी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें वार्षिक सत्र पर। विश्व नेताओं के आगमन से पहले महासचिव ने कहा, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाने का प्रयास हो। सीरिया के इदलिब प्रांत में संघर्ष विराम की कोशिशें विफल, सुरक्षा परिषद में नहीं पारित हो सके 2 प्रस्ताव। पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली ओजोन परत के क्षतिग्रस्त हिस्सों में निरंतर सुधार, और असुरक्षित ढंग से मरीजों की देखरेख किए जाने की वजह से हर मिनट हो जाती है कम से कम 5 लोगों की मौत। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें वार्षिक सत्र और अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेने के लिए विश्व नेता न्यूयॉर्क में एकत्र हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस अहम पड़ाव पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने नेताओं से आग्रह किया है कि दुनिया जिन व्यापक चुनौतियों का सामना कर रही है उसका असरदार समाधान ढूंढने के लिए जो भी संभव हो वो किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल कम्युनिकेशंस विभाग की नई अंडर सेक्रेटरी जनरल मेलिसा फ्लेमिंग के साथ विविध मुद्दों पर चर्चा में महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने बताया कि महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई और टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते में अभी दुनिया पीछे है। मेलिसा फ्लेमिंग ने महासचिव गुटेरेश से सबसे पहले पूछा कि इस समय दुनिया कई मोर्चों पर बहुत नाजुक समय से गुजर रही है। जलवायु आपातकाल, बढ़ती असमानताएं, नफरत और असहिष्णुता में बढ़ोतरी व शांति व सुरक्षा समेत कई अन्य चुनौतियां दुनिया के सामने हैं। क्या उनके पास इनसे निपटने का फॉर्मूला है?
The formula is more international cooperation in relation to climate. That's why we are having a summit, and that summit is aiming at.
फॉर्मूला है ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जहाँ तक जलवायु का सवाल है तो ये सम्मेलन हो रहा है, और ये सम्मेलन सभी देशों को ये समझाने के लिए ही किया जा रहा है कि अब तक जो वो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा करना होगा, और असमानताएँ तो पहले जैसी ही हैं। हमें एक न्यायोचित वैश्वीकरण चाहिए, और ये संभव है केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए। इसीलिए हम सतत विकास लक्ष्यों पर ये सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इसीलिए हमारा 2030 का एजेंडा है, जिसे एक न्यायोचित वैश्वीकरण के लिए सभी देशों को एकजुट करने का संयुक्त राष्ट्र का ब्लूप्रिंट माना जाता है। अगर हम इन पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें तेजी से फैलती नफरत की भाषा समेत सभी मुद्दों का एकजुट होकर सामना करना होगा।
मेलिसा फ्लेमिंग ने महासचिव गुटेरेश से दूसरा सवाल पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि विश्व नेता जलवायु संकट से निपटने के लिए ठोस समाधान अपने साथ लेकर आएंगे।
What we want to have is more and more countries coming here and committing to carbon neutrality in 2050.
हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देश यहाँ आए और 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करें और उत्सर्जन घटाने का वादा करें, साथ ही ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए और हर साल विकासशील देशों में इसकी रोकथाम के लिए 100 अरब ज्यादा की जो जरूरत होती है उसके लिए वित्तीय पोषण दें। मतलब ये कि हमें ऐसी उम्मीद है कि सभी देश, शहर और व्यवसाय क्या उपाय करेंगे उनकी घोषणा सम्मेलन के दौरान कर सकेंगे।
इस इंटरव्यू को विस्तार से देखने और पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। एक बार फिर वही समय आ गया है सितंबर महीने का, जब पूरी दुनिया की नजरें न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर आकर टिकती हैं। मौका होता है महासभा के वार्षिक सत्र का, जिसमें विश्व के नेता आम बहस में हिस्सा लेने के लिए मुख्यालय पहुंचते हैं। यूएन महासभा के नए अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे ने गरीबी उन्मूलन, जलवायु कार्रवाई, गुणवत्तापरक शिक्षा और समावेशन को अपनी प्राथमिकताओं में शुमार किया है। मंगलवार को परंपरा के अनुसार हथौड़े की चोट के जरिए उन्होंने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया है। तिजानी मोहम्मद बांडे संयुक्त राष्ट्र में नाइजीरिया के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं। यूएन महासभा अध्यक्ष के तौर पर पहली बार महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह सुरक्षा परिषद के साथ सहयोग और समन्वयन के साथ काम करेंगे।
I will work to engender cooperation that address drivers of conflict,
मेरा प्रयास ऐसे सहयोग को बढ़ावा देना होगा जिससे हिंसा और अशांति को बढ़ावा देने वाली वजहों जैसे गरीबी, समावेशन ना होने और असाक्षरता दूर करने में मदद मिल सके। साथ ही टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साझेदारियां मजबूत बनाने पर भी ध्यान देना होगा। यूएन महासभा के नए अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे, उन्होंने कहा कि उनका प्रयास यूएन सचिवालय के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि हिंसक संघर्ष के पूरी तरह भड़कने से पहले ही उसकी रोकथाम हो सके। गुणवत्ता परक शिक्षा की अहमियत पर बल देते हुए उन्होंने ध्यान दिलाया कि अपनी शिक्षा क्षमता से आगे जाकर कोई भी देश विकास नहीं कर सकता, इसलिए ये जरूरी होगा कि सदस्य देश अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान करें और प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं। जलवायु परिवर्तन को उन्होंने विकास प्रक्रिया में एक अहम मुद्दा बताया है जिसके कारणों और दुष्परिणामों से निपटना जरूरी है। और अब बात सीरिया के इदलिब प्रांत में सरकारी सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच चल रही लड़ाई को रोकने के प्रयासों की। संघर्ष विराम के लिए सुरक्षा परिषद में गुरुवार को दो प्रस्ताव लाए गए लेकिन दोनों ही पारित नहीं हो पाए। लंबे समय से गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया के इदलिब प्रांत में विद्रोहियों का व्यापक दबदबा है जिसे तोड़ने के लिए सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी संख्या में लोग विस्थापन का शिकार हुए हैं। पूरी रिपोर्ट के साथ महबूब खान।
बेल्जियम, जर्मनी और कुवैत ने मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा पेश किया जिसे 15 में से 12 वोट मिले। सुरक्षा परिषद के दो स्थायी सदस्यों रूस और चीन ने अपने वीटो के अधिकार का इस्तेमाल किया और प्रस्ताव को पारित होने से रोक दिया। उनके अपने प्रस्ताव में क्षेत्र में सक्रिय चरमपंथी गुटों की ओर से आतंकवाद के खतरे को रेखांकित किया गया था, लेकिन वो भी पारित नहीं हो पाया। उसके विरोध में 9 मत पड़े और 4 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव उर्सुला म्यूलर ने वोटिंग से पहले कहा कि रूस ने 30 अगस्त को एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा की थी जिसके बाद पश्चिमोत्तर हिस्से में लड़ाई में कमी आई। हालांकि असुरक्षा और मानवीय हालात के और ज्यादा बिगड़ने की चिंता बनी हुई है। दुनिया देख रही है इस उम्मीद में कि सीरिया के लिए एक मानवीय नजरिए से संभावनाएं पैदा हों जहां आम लोग सुरक्षित हों, जरूरतें पूरी की जाएं और मानवीय राहत कर्मी सुरक्षित हों। इदलिब प्रांत में हर महीने मानवीय सहायता कर्मी 16 लाख से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं जिन्हें सीमा पार तुर्की से अभियान के जरिए पूरा किया जा रहा है। मई 2019 से अब तक सैन्य कार्रवाई तेज होने से 4 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। वे सीमा से लगे इलाकों के पास रहने को मजबूर हैं जो पहले से ही घनी आबादी वाले इलाके हैं और ऐसे में मेज़बान समुदायों के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सर्दी के मौसम की तैयारियों के मद्देनज़र मानवीय राहत कर्मियों ने अनुमान लगाया है कि उन्हें 6.80 करोड़ डॉलर की आवश्यकता होगी।
संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एजेंसी ने कहा है कि अगर मौजूदा प्रगति आने वाले समय में भी बरकरार रही तो पृथ्वी की सुरक्षा परत के रूप में काम करने वाली ओजोन परत के कई क्षतिग्रस्त हिस्सों में 2030 तक पूरी तरह सुधार हो जाएगा। यूएन संस्था ने एक बयान जारी करके कहा है कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के इस्तेमाल को बंद करने से भावी पीढ़ियों के लिए ओजोन संरक्षण में मदद मिली है और मानव स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखने में सफलता हासिल हुई है। शिवानी काला की रिपोर्ट।
16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर इस सफलता को पहचाना गया है। साथ ही ऐतिहासिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत के संरक्षण के जिस संकल्प को लिया गया था उसे 32 इयर्स इन हीलिंग के तौर पर याद किया जा रहा है। अब तक ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले 99% से ज्यादा पदार्थों का इस्तेमाल बंद किया जा चुका है जिनमें रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और अन्य उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले रसायन थे। ओजोन परत को पहुंचे नुकसान की वैज्ञानिक समीक्षा दर्शाती है कि वर्ष 2000 से अब तक उसमें हर साल 1-3% की दर से सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने उम्मीद जताई है कि अगर इसी तरह सुधार होता रहा तो उत्तरी गोलार्ध और मध्य अक्षांश पर ओजोन की परत साल 2030 तक पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ओजोन परत में सुधार आने से जलवायु परिवर्तन के असर को भी रोकने में मदद मिली है। 1990 से 2010 तक ओजोन परत की मजबूत ढाल से 135 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने में मदद मिली है। वर्ष 2018 के अंत में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्पष्ट किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वातावरण में मात्रा अब भी लगातार बढ़ रही है, जिसका दुष्प्रभाव वैश्विक तापमान बढ़ने और ओजोन परत को क्षति के रूप में सामने आएगा। ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने से अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें बड़ी मात्रा में धरती तक पहुंचने लगती हैं, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के अलावा शरीर के प्रतिरक्षण प्रणाली कमजोर पड़ने का खतरा बढ़ता है और कृषि योग्य भूमि और जंगलों को भी नुकसान पहुंचता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी तक एकमात्र ऐसी संधि है जिसे सभी सदस्य देशों ने पारित किया है और वे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल बंद करने पर राजी हुए हैं, जिस संबंध में प्रगति को वार्षिक रिपोर्टिंग के जरिए साझा किया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं और बच्चों की मौतों के मामलों में पिछले दो दशकों के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन अब भी हर 11 सेकंड में एक गर्भवती महिला या उसके शिशु की मौत हो जाती है। अधिकांश मौतें जिन कारणों से होती हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है। इस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में एक समूह ने बच्चों और मातृत्व मौतों के मामलों पर आधारित ये रिपोर्ट जारी की है। वर्ष 2000 से अब तक बच्चों की मौत के मामले घटकर लगभग आधे रह गए हैं और मातृत्व मौतों के मामलों में एक तिहाई कमी आई है। किफायती और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं के सुलभ होने से इन आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और नवजात शिशुओं को प्रसव के तुरंत बाद जान का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। प्रतिवर्ष 28 लाख गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मौत, हर 11 सेकंड में एक मौत उन कारणों से होती है जिनकी रोकथाम की जा सकती है। यूएन एजेंसियों ने सुझाव साझा करते हुए बताया है कि हर वर्ष इन लाखों गर्भवती महिलाओं और बच्चों की मौतें किस तरह रोकी जा सकती हैं। इनमें प्रसव के दौरान दाइयों के लिए हाथ धोने के लिए पानी का उपलब्ध होना और किशोर लड़कियों की पढ़ाई जारी रखा जाना है ताकि वे छोटी उम्र में गर्भधारण ना कर सकें। लेकिन नए आंकड़ों के मुताबिक 15 साल से कम उम्र के 62 लाख बच्चों की वर्ष 2018 में मौत हो गई, जबकि 2,90,000 महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव काल के दौरान होने वाली जटिलताओं के कारण जान चली गई। 53 लाख बच्चों की मौतें पिछले 5 साल में हुई हैं और इनमें लगभग आधी संख्या उन बच्चों की है जिनकी जन्म के पहले महीने में ही मौत हो गई। जन्म के पहले महीने में मौत होने का सबसे अधिक खतरा बच्चों को होता है, विशेषकर उन मामलों में जहां उनका जन्म समय से बहुत पहले हो, वे कमजोर हों, प्रसव के दौरान जटिलताएं पेश आए या फिर उन्हें संक्रमण हो जाए। विश्व में बच्चों और मातृत्व मौतों की संख्या कम करने में सफलता हासिल हुई है और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने इस मामले में खासी प्रगति दिखाई है, जहां 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौतों के मामले में 80% की गिरावट आई है।
असुरक्षित ढंग से मरीजों की देखरेख किए जाने की वजह से प्रति मिनट कम से कम 5 लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों, नीति निर्धारकों, स्वास्थ्य देखरेख के काम में जुटे लोगों से मरीजों की समुचित तरीके से देखभाल करने की पुकार लगाई है। मंगलवार 17 सितंबर को मरीज सुरक्षा दिवस मनाया गया। विश्व में पहली बार मनाए जा रहे मरीज सुरक्षा दिवस की थीम स्पीक अप फॉर पेशेंट सेफ्टी यानी मरीज की सुरक्षा के लिए आवाज उठाओ रखी गई। इसके जरिए मरीजों की जान को होने वाले जोखिमों को कम करने और इलाज के समय होने वाली गलतियों जैसे गलत दवाई दिए जाना जैसे मामलों की रोकथाम करने से है। संगठन ने एक मुहिम शुरू की है जिसमें संदेश दिया जा रहा है कि गुणवत्ता परक जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों की सुरक्षा उसका एक बुनियादी अंग है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।